बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और कुशल पूर्वक हैं। और फिर से वार हमेशा की तरह परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से भजन संहिता नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा भजन संहिता अध्याय 26 और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 27 और 28 का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी आपकी दया, प्रेम और करुणा के लिए, जिसे बड़े अनुग्रह के द्वारा आप हमें से प्रत्येक के जीवन में देते हैं। यद्यपि कि हम दुर्बल और कमजोर लोग हैं, बार बार हम गलतियां और पाप करते हैं, इसके बावजूद भी आप हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। और आज फिर से एक बार आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सीखते हैं निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन में निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारी अवस्था में हैं। पिताजी आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें, ताकि प्रत्येक जीवन आज के इस अध्ययन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। इस समय फिर से बार हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज हम भजन संहिता 27 से अपने अध्ययन को आरंभ करें और सर्वप्रथम हमारा विषय है प्रार्थना। यह एक गहन आत्मिकता का भजन है और अनेक ईश्वर भक्त इससे परिचित हैं। इसका पहला पद पढ़ते ही आपका चेहरा जानकारी से खिल उठेगा। यह स्वयं ही दो भागों में विभाजित है। पहले 6 पद परमेश्वर के उस प्रावधान की चर्चा करते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रोत्साहन और विश्वास के लिए उपलब्ध कराए हैं। शेष भजन सहायता और पोषण के लिए प्रार्थना है। यह भजन ढोंगियों का नहीं है, इसमें अनेक हृदयों और जीवनों के लिए संदेश है। यह दाऊद की प्रार्थना है जिसका आरंभ इस महान स्वर पर है, प्रार्थना का आधार। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 27 उसके 1 पद को निकालिए। लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मेरे मित्रों, यह भजन वह और मैं का भजन है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। परमेश्वर मेरी ज्योति है, वह पवित्र परमेश्वर है। वह मुझे अपने वचन की ज्योति द्वारा लेकर चलता है। भजन संहिता 119 और उसके 105 में भजनकार कहता है, तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है, वह मेरा उद्धार है। यह उसके प्रेम की घोषणा है क्योंकि उसके प्रेम ने ही हमारे लिए उद्धार भेजा है। मेरे प्रियो, उद्धार निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में स्पष्ट है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम नहीं किया कि उसका उद्धार करवाए, उसने ऐसा प्रेम किया कि उद्धार उपलब्ध करवाया, और इसी के द्वारा हम उसके निकट आते हैं। यह उद्धार शर्त पर आधारित है, जैसा शमौन पत्रस ने कहा प्रेरितों के काम 4:12 में, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, दाऊद इसी उद्धार की चर्चा करता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मेरी ज्योति मेरा उद्धार, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। परमेश्वर हमें जीवन ही नहीं देता है, वह हमें उस जीवन को पृथ्वी पर जीने का सामर्थ्य भी देता है। वह आपके जीवन की ज्योति है मेरे मित्रों, वह आपसे प्रेम करता है और आपको शक्ति देता है। आगे है, मैं किसका भय खाऊं। मार्टिन लूथर ने कहा, परमेश्वर जिसके साथ हो वह अकेला ही बहुमत होता है। इंग्लैंड के राजा क्रेमवेल से पूछा गया कि वह किसी का भय मानता है या नहीं, क्या कारण है। उसने उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि यदि आप परमेश्वर का भय माने तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, हम भजन संहिता 27 उसके 2 में पढ़ते हैं, लिखा है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। दाऊद अपने अतीत में उस समय का विचार कर रहा था जब वह घोर संकट में था। उसके जीवन के आरंभ में वह एक युवा चरवाहा था और अपनी भेड़ों को शेर और भेड़ियों से बचाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। परंतु यह दैनिक जीवन का अभ्यास नहीं है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मेरा शेर और भालू का सामना हमेशा नहीं होता है और मैं नहीं करता, परंतु जब भी मैं उसका सामना करता हूं वे पिंजरे में ही होते हैं। आज मानव रूपी शेर और भेड़िए सड़कों पर घूम रहे हैं जो हमें फाड़ खाने के लिए तैयार हैं। और पहला पत्रस की पत्री 5 उसके 8 में एक पुराने शेर का उल्लेख है, लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। भजन संहिता 27 उसके 3 में लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। दाऊद का भरोसा परमेश्वर था और यह आज परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए उपलब्ध किया है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन देकर कुछ कहा, तब उसने कहा, डरो मत, आपके पास और मेरे पास एक पुनरुत्थित उद्धार करता है, जीवित उद्धार करता है। हम कई बार भयभीत होते हैं, मुझे ऊंचाइयों से कभी कभी डर लगता है और यही कारण है कि आज तक मैं हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर पाया हूं। तब प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु तू मेरे साथ हो, मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरे मित्रों, प्रार्थना पर मनन, तो आइए देखें भजन संहिता 27 के 4 में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यह एक गंभीर पद है। दाऊद अपने जीवन को तराश कर एक बिंदु पर ले आया है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। पौलुस ने भी अपने जीवन में यही किया, फिलिपियों के पत्र 3:13-14 में, केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे मित्रों, आज आप अपने जीवन को ऐसे तराश लें जैसे पेंसिल तराशते हैं कि आप लिख पाए। हमारे जीवन बहुत जटिल हैं, अतः तराशना समाप्त न कर दें। मैंने अपने अधिकांश जीवन को रसोई में काम करती मार्था के समान पाया है। वह काम के बोझ में दबी हुई थी, जिसे हम लुकारचित सुसमाचार 10:40 में देखते हैं। बेचारी मार्था एक बर्तन में कुछ पकाती थी, फिर एक बर्तन में कुछ उबालने को रखती थी, फिर एक बर्तन में आलू आग पर चढ़ाती थी। उसी समय अलमारी से कुछ गिरता है। वह सब काम अकेले ही एक साथ करते हुए थक जाती थी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन कैसे जटिल हो गए हैं। हम लगातार तनावों और बोझ के कारण हताश हो जाते हैं, अतः अपने जीवन को महत्वपूर्ण बातों तक नहीं ला पाते, तराश नहीं पाते। और यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को तराश करके रखें। अपने जीवन को लघुतम विभाजक तक घटा देना राहत देता है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे व्यक्तिगत अनुभव की व्याख्या का बुरा नहीं मानेंगे, परंतु यह सच है कि मेरे जीवन का सबसे अधिक आनंद का समय तब आरंभ हुआ जब मैं अपने सेवा के अनुभवों को पीछे मुड़ करके देखने लगा। मेरे जीवन का सबसे अधिक आत्मिक लाभ का समय तब आरंभ हुआ था। जी हाँ, मैंने इस लघु अंतराल में अपने जीवन के किसी भी समय की अपेक्षा सबसे अधिक मनुष्यों को मसीह को ग्रहण करते हुए देखा है, और मैंने ऐसा आनंद कभी नहीं पाया। आप जानते हैं क्यों? मैंने अपने जीवन को तराश कर एक ही उद्देश्य तक सीमित कर दिया है, बाइबल की शिक्षा देना। अब मैं केवल यही एक काम करता हूँ। मेरा जीवन इसी काम में तराशा हुआ है और मैं इसके प्रति जोश से पूर्ण हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझसे यही करवाना चाहता है। अब दाऊद के जीवन की एकमात्र मनोकामना पर ध्यान दे, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मेरे विचार में इसका अर्थ यह नहीं कि दाऊद परमेश्वर के मंडप में चारपाई डालकर रहने लगे। वह चाहता था कि परमेश्वर से भेंट करने का स्थान, वाचा का संदूक उसके पास यरूशलेम में हो। उसने यथासंभव प्रयास करके वाचा के संदूक को यरूशलेम में मंडप में रखा और परमेश्वर के लिए एक सुसज्जित मंदिर का नक्शा तैयार किया। हमें मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की व्यवस्था है। हमें इसमें आनंद मनाना है। वही है जो हमें इस बिंदु तक तराशने में हमारी सहायता करेगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1-5 पद में पौलुस विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के 8 लाभ को बताता है। दूसरा लाभ जो पौलुस बताता है वह है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर के निकट पहुंच पाना कैसा अद्भुत और सौभाग्य की बात है। मेरे मित्रों, दाऊद के जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करने पाऊं। मेरे मित्रों, यहोवा परमेश्वर के मंदिर में दया आसन था। दाऊद को दया की आवश्यकता थी। मुझे तो दया की आवश्यकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी इसकी आवश्यकता होगी। परमेश्वर के भवन में एक वेदी थी जो मसीह यीशु के क्रूस की प्रतीक थी, जिसके द्वारा दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति में आने की सुविधा प्राप्त थी। आज आप और मैं प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। हमें इस अनुपम अनुग्रह में प्रवेश करने का मार्ग प्राप्त है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास आने का यह मार्ग प्राप्त करना हमारा कैसा सौभाग्य है। जी हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह भजन परमेश्वर की प्रजा के लिए ऐसी अद्भुत आशीष है। अब इस 5वें पद पर ध्यान दीजिए, भजन संहिता 27:5 में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ध्यान दे, मिलाप वाले तंबू का गुप्त स्थान कहाँ था? परम पवित्र स्थान में। वहां महायाजक के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जा सकता था। क्या आप जानते हैं कि वहां क्या था? वाचा का संदूक, जो सोने से आवृत मात्र एक संदूक था, परंतु उसके ऊपर एक सुसंपादित ढकना था। उसे दया आसन कहते थे, क्योंकि उस पर लहू छिड़का जाता था। आज क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है, हमारे पास भी एक दया आसन है जिसके निकट हम जा सकते हैं। यही वह स्थान है जहां वह हमें छिपा लेता है। यह हमारा कैसा सुरक्षित स्थान है। भजन संहिता 27 के 6 पद में हम पढ़ते हैं, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। जब हम इस अद्भुत परिदृश्य को समझकर हमारे लिए किए गए मसीह के काम को अंतर्ग्रहण करते हैं तो हमारा मन स्तुति गान से भर जाता है। इसके कारण हम अगले पद में व्यक्त प्रार्थना को करते हैं जो उचित प्रार्थना की घोषणा है। भजन संहिता 27 उसके 7 पद में लिखा है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। आप देख सकते हैं कि उस गुप्त स्थान में दया आसन था और परमेश्वर ने आज हमारे लिए वह गुप्त स्थान तैयार कर दिया है जहां हमें परमेश्वर की दया प्राप्त होती है। भजन संहिता 27 के 8 पद में लिखा है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। दाऊद परमेश्वर के मुंह में आमंत्रण के शब्द डालते हुए कहता है, मेरे दर्शन का खोजी हो। तब दाऊद कहता है, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरा दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे लिए ललकता है। क्या आप उसे प्रतिक्रिया दिखाते हैं? उसके साथ रहना दुश्वार हो जाता है जो प्रेम प्रदर्शन ना करे। विवाह ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां स्त्री कमाए और पुरुष रसोइया बनाए। विवाहित जीवन प्रेम का संबंध है। यदि ऐसा ना हो तो वह जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर के साथ हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। आज बहुत सारे परिवार वैवाहिक जीवन में अलग थलग पड़े हुए हैं। दाऊद का हृदय प्रतिक्रिया में उछल पड़ा जब परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और उसने प्रतिक्रिया में कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे साथ सहभागिता रखना चाहता हूं, तब दाऊद ने कहा, मैं तेरे साथ संगति रखना चाहता हूं। यह क्या ही भली बात है कि आज हम भी कह पाते। भजन संहिता 27 उसके 9 पद में लिखा है, अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे प्रियो, पाप करने पर दाऊद को समझ में आया कि जब प्रभु ने उससे अपना चेहरा छिपा लिया तब कैसा लगा। परमेश्वर के साथ उसकी सहभागी समाप्त हो गई थी, उसका आनंद समाप्त हो गया था, परंतु उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे दे। भजन संहिता 27 के 10 में लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आलोचक इस पद को गलत समझते हैं। डेलिटस का भी यही विचार था कि इस पद का लेखक कोई और है। इस संभावना को इसलिए स्वीकार किया जाता है कि दाऊद के माता पिता ने उसे नहीं त्यागा था। मेरे विचार में तो दाऊद के कहने का अर्थ यहां पर यह नहीं है। यहां आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यह कालवाची वाक्य है, जिसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि मेरे माता पिता भी मुझे छोड़ देते तो यहोवा मुझे संभाल लेता। मैं चाहता हूं कि बाइबल के आने वाले संस्करण इस पर ध्यान अवश्य दें। आपके माता पिता आपको त्यागेंगे नहीं, परंतु यदि वे ऐसा करें तो परमेश्वर आपको संभाल लेगा। आज अनेक माता पिता अपने बच्चों को दूसरों पर छोड़ देते हैं। स्मरण रखें कि आपके बच्चे आपके ही हैं। वे आप ही का दायित्व है कि आप उन्हें प्रभु के निकट में लाएं। न तो कोई संडे स्कूल और न ही प्रचारक से आप आशा रखें। आप ही को उन्हें समय और ध्यान देना होगा। आज बहुत सारे माता पिता दूसरों पर अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा बने, जो संभव नहीं है। जी हाँ, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चों को प्रभु की निकटता में बढ़ाएं। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 27 उसके 11 पद में लिखा है, हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। दाऊद कहता है, मुझे मेरे शत्रु के समक्ष अच्छी गवाही प्रस्तुत करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह मेरी कटु आलोचना करेगा। प्रभु मेरी रक्षा कर और अपने कर्मों से तुझे लज्जित न होने दूं, ऐसी मेरी सहायता कर। भजन संहिता 27 के 12 पद में आगे हम पढ़ते हैं, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़ दे, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरोध उठे हैं। मैं जिस कलीसिया का सदस्य हूं वह अब मुक्त विचारवादी है। मेरी प्रार्थना सदा ही यह थी कि हे प्रभु, मुझे कभी ऐसी स्थिति में ना होने दे जहां मैं कलीसियाई के अगुओं और समिति की दया पर रहूं। जी हाँ, मैं अपने 20 वर्षीय सेवा काल में सक्रिय रहा हूं और परमेश्वर ने मेरी सहायता की है, मनुष्य की दया पर कभी भी निर्भर रहने नहीं दिया। इस पद में दाऊद यही प्रार्थना करता है, मेरा हृदय उन अनेक सेवकों के लिए दुखता है जो स्वयं को कलीसिया प्रशासन या राजतंत्र पर आश्रित पाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वे दाऊद की नई प्रार्थना करें, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरोध उठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। आइए देखें प्रार्थना की पूर्ति। भजन संहिता 27 के 13 में लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवतों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मेरे प्रियो, आज के संसार में भी आप परमेश्वर की भलाई देख सकते हैं कि वह कैसा महान है। भजन संहिता 27 के 14 पद में लिखा है, जो आखिरी पद है, यहोवा की बाट जोहता रह, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। आज विश्वासियों में बहुत हृदय रोग हैं। इस रोग को भीरु हृदय कहते हैं। हम सब में यह दुर्बलता है, इसका उपचार क्या है? हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। ऐसा करने पर परमेश्वर हमारे हृदय को दृढ़ करेगा और वह वास्तव में हृदय का विशेषज्ञ है। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 27 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 28 में अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इसका विषय है संकट में पुकार। यह छोटा सा अनुपम भजन एक पुकार है। इसमें दाऊद संकट काल में है। यह महाक्लेश के समय की इसराइल के लिए भविष्यवाणी भी है। यह उसके शत्रुओं के लिए दंड की याचना है और उसकी भावी युक्ति के लिए स्तुति है। यह भजन वास्तव में अगले भजन की भूमिका है। तो आइए हम पढ़ें भजन संहिता 28 उसका एक पद। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं जो मृतक लोक में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, इसराइल इस चट्टान को जानता था। इसराइल ने इस चट्टान का त्याग किया जिसके कारण मूसा ने विलाप किया था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, उसने अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। चट्टान खड़े होने का स्थान है। यह एक दृढ़ आधार प्रदान करती है। आज का विश्वासी भी इस चट्टान को जानता है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्त की कलीसिया को लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हम भजन संहिता 28 के 2 में आगे पढ़ते हैं, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। पवित्र स्थान अर्थात दया आसन जो मिलाप वाले तंबू में था, मसीह ने जो दया आसन उपलब्ध कराया है उसे हमें थामे रखना है। भजन संहिता 28 के 6 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, इसलिए दाऊद ने कहा कि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। जी हाँ, यदि आप आज प्रार्थना करते हैं तो निश्चय जाने कि वह आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। भजन संहिता 28 उसके 7-9 पद में आगे लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। मेरे मित्रों, परमेश्वर सामर्थ है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सुरक्षा की ढाल है, वह सामर्थ और सुरक्षा है। आप कहेंगे, क्या वह मेरा सामर्थ है? क्या वह मेरी सुरक्षा है? यदि आपका विश्वास उसमें है तो वह अवश्य है। यदि आप परमेश्वर में भरोसा रखेंगे तो वह आपकी सहायता अवश्य ही करेगा, वह प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपको आशीष देगा। वह प्रार्थनाओं का उत्तर देता है तो क्या होता है? मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। ओह, मेरे मित्रों, प्रार्थना का उत्तर पाकर हम उसे धन्यवाद कहना और उसकी स्तुति करना कभी ना भूलें। जब कभी परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है, निश्चय मैं बड़े आनंद के साथ उसकी स्तुति करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ, उसके महिमा के गीतों को गाता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। अभिषिक्त अर्थात मसीह प्रभु यीशु, जिसके विषय भजनों में अधिकतर कहा गया है कि वह इसराइल का भावी मुक्तिदाता है। अंत में वह याचना करता है, यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर। दूसरे शब्दों में, अपनी प्रजा की चरवाही कर। यह अभिषिक्त जन एक चरवाहा है जो सदैव उन्हें संभाले रहेगा। इससे हमें यशाया की भविष्यवाणी स्मरण आती है, 40 अध्याय उसके 11 पद में, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार के लिए रखेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी यही बात लागू होती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उद्धार पाएं, उस आनंद को पाएं, क्योंकि वह हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। यदि आज आप निराश हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं, परेशान है, तो इस भजनकार के साथ अपने आप को उसकी निकटता में लाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी ये दुविधाएं हैं, और निश्चय जाने कि वह आपकी प्रार्थना को, आपकी गिड़गिड़ाहट को अवश्य ही सुनेंगे और उत्तर देंगे। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं इस बात का अवश्य ही विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। नमस्कार।
चलो जय 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 कार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा, सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना। जय 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 जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा, सामने आओ पास उसके तुम करो।